समाचार सेवा प्रभाग प्रस्तुत करता है कार्यक्रम आज सवेरे। जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन जरूरी है, ऑक्सीजन के लिए पेड़ पौधे जरूरी हैं और पेड़ों को हरा भरा रखने के लिए पानी जरूरी है। लेकिन पानी अगर पेड़ों की जड़ में न डालकर सिर्फ पत्तियों पर डाला जाए तो क्या पेड़ हरा भरा रह पाएगा? नहीं ना। यानी सही जगह पर सही चीज का सही वक्त पर पहुंचना मायने रखता है, वरना किसी चीज का कोई अर्थ नहीं रह जाता। ठीक इसी तरह रिश्तों को बनाए रखने, बचाए रखने और कायम रखने के लिए जरूरी है कि उन्हें प्यार, सम्मान और अहमियत दी जाए, क्योंकि यही हमारे जीवन की पूंजी है और यही हमें जीवन में निरंतर आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। आगे बढ़ते इन कदमों के साथ इसी सोच के साथ आगाज करते हैं आपके न्यूज मैगजीन प्रोग्राम आज सवेरे का FM 100.1 MHz पर आकाशवाणी गोल के आज सवेरे कार्यक्रम की आज की कड़ी में मैं हूं नईम अख्तर और मेरे साथ हैं सायरा मुस्तफा। सायरा, बहुत देर बाद हम लोग एक साथ आज सवेरे में हैं।
एब्सोल्युटली नईम, नमस्कार, आदाब एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल आवर लिसनर्स हु हैव जॉइंड अस इन दिस लेटेस्ट एपिसोड ऑफ आज सवेरे। एंड नईम ओपन्स द शो विद सच ब्यूटीफुल लाइंस, और मेरे ख्याल से जो आपने कहा कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू एक्ट एट द राइट मोमेंट, एंड व्हेन यू टॉक अबाउट कि रिश्तों में भी यही चाहिए और रिश्तों में भी वक्त पे अगर आप वही प्यार मोहब्बत दिखाएं तो भी बहुत जरूरी है। बिकॉज वी सी कि इंसान समटाइम्स यू नो वी इन आवर यंग एज वी आर सो हाई ऑन ईगोज कि हम लोग रिश्तों को तय कर देते हैं, एंड व्हेन वी रीच प्रोबेबली द विंटर्स ऑफ आवर लाइफ तो हमें याद आता है कि अरे हमें उनसे बात करना चाहिए। तो आई थिंक ठीक है, बात कर रहे थे बट वक्त पे रहते हुए
और यही वजह के वक्त पे रहते हुए अपनी श्रोताओं से बात कर रहे हैं
जस्ट लाइक वी आर हियर जस्ट ऑन 7:30 AM एवरी डे। So we hope that you will enjoy the coming show for the next half an hour where we'll bring you the latest headlines. Apart from that, we'll also have news from the very own city in our Metro News section. और हमारा खास सेगमेंट जो लास्ट में हम लोग रखते हैं उसे वेरी रिमेम्बर ऑफ द पर्सनैलिटीज, तो उसकी भी बात करेंगे
और बीच में हम मौसम के बारे में भी जिक्र जरूर करेंगे।
बिल्कुल बिल्कुल, हिंदुस्तानी होके मेरे ख्याल से कोई कॉन्वर्सेशन विदाउट द जिक्र ऑफ मौसम इज इनकम्प्लीट, राइट? सो ऑफ कोर्स वी विल गिव यू हेड्स अप ऑन दैट, बट लेट्स स्टार्ट विद द हेडलाइन। नहीं
जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में पीएम स्वनिधि लाभार्थियों को संबोधित करेंगे। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी 1,00,000 रेहड़ी पटरी वालों को योजना के अंतर्गत ऋण वितरित करेंगे, जिसमें दिल्ली के 5,000 रेहड़ी पटरी वाले भी शामिल हैं। श्री मोदी दिल्ली मेट्रो के चौथे चरण के 2 अतिरिक्त कॉरिडोर की आधारशिला भी रखेंगे। ये लाजपत नगर से साकेत जी ब्लॉक कॉरिडोर और इंद्रदोग से इंद्रप्रस्थ कॉरिडोर होंगे, जिनकी कुल लंबाई 20 किलोमीटर से अधिक होगी। प्रस्तावित गलियारों से कनेक्टिविटी में सुधार और यातायात सुगम होगा। लाजपत नगर से साकेत जी ब्लॉक कॉरिडोर पर स्टेशनों में लाजपत नगर, एंड्यूजगंज, ग्रेटर कैलाश वन, चिराग दिल्ली, पुष्पा भवन, साकेत जिला केंद्र, पुष्प विहार और साकेत जी ब्लॉक शामिल होंगे। इंद्रलोक इंद्रप्रस्थ कॉरिडोर के स्टेशनों में इंद्रलोक, दया बस्ती, सराय रोहिल्ला, अजमल खान पार्क, नबी करीम, नई दिल्ली, LNGP हॉस्पिटल, दिल्ली गेट, दिल्ली सचिवालय और इंद्रप्रस्थ शामिल होंगे।
प्राइम मिनिस्टर ऑफ भूटान दासो शेरिंग टोबगे विल बी ऑन अ 5-day विजिट टू इंडिया फ्रॉम टुडे। दिस इज हिज फर्स्ट ओवरसीज विजिट आफ्टर अज्यूमिंग ऑफिस इन जनवरी दिस ईयर। The External Affairs Ministry said during the visit, Prime Minister of Bhutan will call on President Draupadi Murmu and host bilateral talks with Prime Minister Narendra Modi. Prime Minister Tobgay will also visit Mumbai. The Minister of Foreign Affairs and External Trade, Minister of Energy and Natural Resources, Minister for Industry, Commerce and Employment and senior officials from the Government of Bhutan will also accompany Prime Minister Tobgay. The Ministry said India and Bhutan enjoy exemplary ties of friendship and cooperation based on trust, goodwill and mutual understanding at all levels. The visit of the Prime Minister of Bhutan will provide an opportunity to both sides to review the progress in the unique partnership and to discuss ways and means to expand the enduring ties of friendship and cooperation between India and Bhutan.
रक्षा मंत्रालय ने 34 उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर की खरीद के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ 8,073 करोड़ रुपए के 2 अनुबंधों पर हस्ताक्षर किए हैं। मंत्रालय ने कहा कि भारतीय सेना के लिए स्वदेशी रूप से डिजाइन विकसित और निर्मित 25 उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर और भारतीय तटरक्षक बल के लिए 9 उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर की खरीद का सौदा किया। मंत्रालय ने कहा कि समुद्री भूमिका वाले हेलीकॉप्टरों को समुद्री निगरानी, खोज और बचाव तथा कार्गो और कार्मिक परिवहन जैसे कार्यों के लिए डिजाइन किया गया है। मंत्रालय ने यह भी कहा कि इस परियोजना का रक्षा क्षेत्र में रोजगार सृजन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।
The Heavy Industries Ministry has announced the Electric Mobility Promotion Scheme 2024 to accelerate the adoption of electronic vehicles or EVs in India. The ministry said that a total outlay of 500 crore rupees will be implemented for 4 months under the scheme. It will run from the 1st of next month until July. It added that only electric two-wheelers E2Ws and electric three-wheelers E3Ws will be eligible under the scheme, including registered e-rickshaws, e-cars and N5 automobiles. Furthermore, only EVs fitted with advanced batteries will be subject to incentives to encourage the growth of advanced technologies. The ministry has estimated that the scheme will help over 372,000 EVs. The ministry hopes it will promote faster adoption of electric vehicles and provide further impetus to the green mobility and development of the EV manufacturing ecosystem in the country.
भारतीय जनता पार्टी ने आगामी लोकसभा चुनावों के लिए 72 उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी की। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर, नितिन गडकरी नागपुर, पीयूष गोयल उत्तरी मुंबई और डॉक्टर भारती प्रवीण पवार महाराष्ट्र की दिंडोरी सीट से चुनाव लड़ेंगी। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी धारवाड़, शोभा करंदलाके उत्तरी बेंगलुरु और भगवंत खूबा कर्नाटक की गिरिडीह लोकसभा सीट से उम्मीदवार होंगे। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल करनाल और केंद्रीय मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर फरीदाबाद सीट से चुनाव मैदान में होंगे। पार्टी ने उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को हरिद्वार और कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई को हावेरी सीट से उम्मीदवार बनाया है। पार्टी ने दिल्ली से बाकी 2 सीटों के लिए उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। हर्ष मल्होत्रा को पूर्वी दिल्ली और योगेंद्र चंदोलिया को उत्तर पश्चिम दिल्ली से चुनाव मैदान में उतारा गया है। इस सूची में महाराष्ट्र और कर्नाटक की 20-20 सीटों, हरियाणा और तेलंगाना की 6-6, गुजरात की 7, मध्य प्रदेश की 5, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की 2-2 और त्रिपुरा तथा दादरा और नगर हवेली की 1-1 सीट के लिए उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा की अध्यक्षता में केंद्रीय चुनाव समिति ने उम्मीदवारों के नामों को अंतिम रूप दे दिया है।
Some international news, the US House of Representatives has passed a landmark bill that could ban TikTok in the US unless the app passed ways with its Chinese parent company, ByteDance. It's a major challenge to one of the world's most popular social media platforms used by 170 million Americans. While the bill passed overwhelmingly in a bipartisan 352-65 vote, it still needs to clear the Senate and be signed by the President to become law. If enacted, the bill would give TikTok about 5 months to separate from ByteDance, or app stores in the US would be banned from hosting it on their platforms. It's not yet clear what the fate of the measure will be in the Senate. Lawmakers supportive of the bill have argued that TikTok poses a national security threat because the Chinese government could use its intelligence laws against ByteDance, forcing it to hand over the data of US app users.
और अगर खेलों की बात करें तो फायदा आज हमारे पास तो ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप के बारे में खबर है, जिसमें आज महिला एकल में पीवी सिंधु का सामना दक्षिण कोरिया की आन से यंग से होगा। महिला युगल के प्री क्वार्टर फाइनल में अश्विनी पोनप्पा और तनिषा क्रास्टो की जोड़ी का मैच चीन की झिंग यू और झांग सुशियांग से होगा। कल बर्मिंघम में भारतीय जोड़ी ने हांगकांग की यंग टिंग और यंग कुई लाम को सीधे सेटों में 21-13, 21-18 से पराजित किया। लक्ष्य सेन भी पुरुष एकल के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। उन्होंने डेनमार्क के मैग्नस जोहानसन को 21-14, 21-14 से हराया, लेकिन प्रियांशी राजावत को इंडोनेशिया के चिको ओरा से हार का सामना करना पड़ा।
एंड नईम इन वुमेन्स प्रीमियर लीग क्रिकेट, दिल्ली कैपिटल्स डिफीटेड गुजरात जायंट्स बाय 7 विकेट्स एट द एमजीपी स्टेडियम इन न्यू दिल्ली लास्ट नाइट। दिल्ली कैपिटल्स स्कोर्ड 129 फॉर लॉस ऑफ 3 विकेट्स इन 13.1 ओवर्स। Earlier, Gujarat Giants have set the target of 127 runs. Gujarat Giants, led by Beth Mooney, won the toss and decided to bat. Gujarat Giants scored 126 for 9 in stipulated 20 overs. while DC finished at the top to directly proceed into the finals. Defending champions Mumbai Indians and Royal Challengers Bangalore will now square off in the playoff tomorrow. The winner of the match will face DC in the final of the tournament on Sunday at the same venue.
आज सवेरे में अब सारा वक्त है प्रमुख महानगरों से जुड़ी हुई कुछ प्रमुख खबरों का. तो आप शुरुआत करेंगे चेन्नई बेंगलुरु हैदराबाद की खबरों से?
यस नहीं, लेट्स स्टार्ट विद चेन्नई. अर्ली दिस समर द ग्रेटर चेन्नई कॉर्पोरेशन प्लान टू डीसेल्फ ड्रेन. अकॉर्डिंग टू डेप्यूटी मेयर महेश कुमार, द सिटी हैड अ लॉट ऑफ रेन फ्रॉम जून टू सितंबर लास्ट ईयर. The Greater Chennai Corporation is preparing ahead of the monsoon because the model code of conduct is anticipated to be released soon and would be in effect until the end of May. In many locations within and surrounding the city, the drains are being desilted. Doctors at Government Rajaji Hospital removed the organs of a 59-year-old lady who was deemed brain dead following a car accident and used those organs to transplant into 6 other patients. Dean Dr. A. Ratinagar stated in a statement that a 59-year-old Virudhunagar resident was hurt in a traffic collision while riding pillion on a two-wheeler at the time of the incident. The agreement to donate her organs was granted by her spouse. Her lungs were flown to Apollo Hospital in Chennai so that they might be transplanted into a patient. The liver was assigned to a 50 recipient. Patients in Madurai received the kidneys as donations. So Naeem, a very, very tough but commendable decision by the spouse of this lady, because it's very painful to make this decision. Lekin agar dekha gaya, because she was brain dead and for the rest of the life, I'm sure she would have been in a vegetative state. But three people got a new lease of life because of organ donation.
Yeah.
A very commendable move over there.
Yeah.
And if we talk about some updates from the city of Bengaluru, Karnataka Deputy Chief Minister D.K. Shivakumar inaugurated the mechanized garbage transfer station at Ajipura in Bengaluru yesterday. The city is building a transfer station in an effort to raise the bar for environmental quality and public health. By removing garbage sites, these transfer stations will make the city appear cleaner. The data will be registered by the command center and the containers will be weighed by the transfer stations as well. This will enhance the tracking and monitoring of the amount of waste produced at micro level. Moving on to Hyderabad, Union Tourism Minister G. Kishan Reddy unveiled the plaque for Telangana's first National Institute of Electronics and Information Technology in Secunderabad yesterday. The institute aims at addressing the shortage of human resources that local sector companies are facing by providing skill training of at least 5,000 people through the center during the next 3 years. Speaking on the occasion, the union minister said that India will increase its hold on electronics and IT sectors in the days to come. He further said that setting up the center within a month of sanctioning of these centers at Secunderabad and Tirupati reflects how the central government is making efforts for better opportunities for the youth. So Naeem, this was the buzz that I had from these three cities of Chennai, Bengaluru and Hyderabad. What is the latest that you have from Delhi, Mumbai and Kolkata?
मेरे पास जो दिल्ली का खबर है, पहले हम उनसे आगाज कर लेते हैं.
बिल्कुल.
दिल्ली यातायात पुलिस ने आज राजधानी के जवाहरलाल नेहरू मार्ग और रामलीला मैदान पर किसान महापंचायत के मद्देनजर एक यातायात निर्देशिका जारी की है. भारी भीड़ को ध्यान में रखते हुए यातायात पुलिस ने कुछ यातायात नियम और डायवर्जन बनाए हैं. एक प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुए यातायात विभाग ने बताया कि कुछ सड़कों और जंक्शनों पर समान यातायात की आवाजाही सुबह 6 बजे से शाम 4 बजे तक नियंत्रित की जाएगी. इनमें जवाहरलाल नेहरू मार्ग, बहादुर शाह गफर मार्ग, मिंटो रोड, बारह खंबा रोड, संसद मार्ग, अशोक रोड, नेताजी सुभाष चंद्र मार्ग सहित कई अन्य मार्ग शामिल हैं. वहीं कुछ सड़कों पर यातायात के रूट को परिवर्तित भी किया जाएगा. इनमें दिल्ली के मीर दर्द चौक, जनपथ क्रॉसिंग, पहाड़गंज चौक सहित कई मार्ग शामिल हैं. पुलिस ने लोगों को महापंचायत के दिन अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह दी है. दिल्ली से ही एक और खबर यह है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कल मोती नगर रिंग रोड पर बने 3 लेन के फ्लाईओवर का उद्घाटन किया. इस अवसर पर मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कहा कि इस फ्लाईओवर के निर्माण से धौलाकुआं से आजादपुर और दिल्ली से रोहतक आने जाने वाले लोगों को लाभ मिलेगा. उन्होंने कहा कि पहले ट्रैफिक जाम के कारण यहाँ आधे किलोमीटर की दूरी को तय करने में आधा घंटा लग जाता था, लेकिन फ्लाईओवर के बन जाने से ये दूरी केवल 3 मिनट में तय होगी। मुख्यमंत्री ने जानकारी दी कि इस फ्लाईओवर के बाद इसका एक और बड़ा हिस्सा क्लब रोड फ्लाईओवर के रूप में निर्माणाधीन है, जो इस साल जुलाई तक बनकर तैयार हो जाएगा। तो ये दो खबरें जो दिल्ली की थी वो तो ट्रैफिक से जुड़ी हुई थी, लेकिन मेरे पास एक और खबर है, बल्कि दो खबरें हैं दिल्ली से ही, वो भी अपने श्रोताओं तक पहुंचा देते हैं। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने कल उत्तर पूर्वी जिले के वेलकम पुलिस थाने पर रिश्वत स्वीकार करते हुए दिल्ली पुलिस के एक सिपाही को गिरफ्तार किया। सीबीआई के अनुसार आरोपी सिपाही 13,000 रूपए की रिश्वत ले रहा था। सीबीआई ने एक शिकायत के आधार पर आरोपी के विरुद्ध मामला दर्ज किया है, जिसमें जाफराबाद मेट्रो स्टेशन से शिकायतकर्ता की बसों के निर्बाध संचालन और यात्रियों को अपनी बस में बैठाने की अनुमति देने के लिए रिश्वत की मांग की गई थी। दिल्ली विश्वविद्यालय और रूसी दूतावास के सहयोग से भारतीय कॉलेज में रूसी भाषा की बढ़ती भूमिका विषय पर 2 दिवसीय कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इस अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य शिक्षा, भाषा और संस्कृति के क्षेत्र में ब्रिक्स देशों और शंघाई सहयोग संगठन देशों में रूसी भाषा के बढ़ते महत्व को बढ़ावा देना था। तो ये दिल्ली की खबरें थी, और मुंबई की खबरों में दो खबरें हमारे पास हैं। पहली खबर यह है कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने कल मुंबई के नरीमन पॉइंट पर महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम के 187 इंटरसेक्टर वाहनों को झंडी दिखाई। मुख्यमंत्री शिंदे ने कहा कि सरकार राज्य को दुर्घटना मुक्त बनाने में विभाग का समर्थन करती है। श्री शिंदे ने MFRTC से आधुनिक यातायात प्रबंधन प्रणालियों में स्पीड गन और कृत्रिम बुद्धिमत्ता की उन्नत तकनीक का उपयोग करके महाराष्ट्र को दुर्घटना मुक्त बनाने की अपील की। श्री शिंदे ने कहा कि जिला स्तरीय समितियों के माध्यम से दुर्घटना संभावित स्थानों को कम किया जाना चाहिए। श्री शिंदे ने MFRTC को रात्रि दुर्घटनाओं को रोकने और सार्वजनिक जागरूकता बढ़ाने के लिए गश्त मजबूत करने का निर्देश दिया। एक और खबर मुंबई से, भारतीय रिजर्व बैंक ने RBI द्वारा जारी कुछ निर्देशों का पालन न करने पर बैंक ऑफ इंडिया पर 1,40,76,000 का मौद्रिक जुर्माना लगाया है। रिजर्व बैंक के कुछ निर्देशों का अनुपालन न करने के लिए बंधन बैंक लिमिटेड इसके अलावा NBFC रिजर्व ने धोखाधड़ी की निगरानी का अनुपालन न करने के लिए इंडोस्टार कैपिटल फाइनेंस लिमिटेड कंपनी पर 13,60,000 रूपए का मौद्रिक जुर्माना लगाया गया है। और एक खबर हम कोलकाता से भी लेकर आए हैं अपने सभी सुनने वालों के लिए। कोलकाता में कल गार्डन बीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड GRSE द्वारा INS एग्रे और INS अक्षय नाम के 2 पनडुब्बी रोधी युद्ध पोत लॉन्च किए गए। GRSE द्वारा बनाए जा रहे इस प्रकार के 8 युद्ध पोतों की श्रृंखला के लिए 5वें और 6वें एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट हैं। इस अवसर पर एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी मुख्य अतिथि हैं। इन युद्ध पोतों का उपयोग तटीय क्षेत्रों में पनडुब्बी रोधी युद्ध, समुद्री संचालन और बारूदी सुरंगें बिछाने के लिए किया जाएगा। वायुसेना प्रमुख VR चौधरी ने कहा था कि GRSE भारतीय नौसेना और भारतीय तट रक्षक बल के लिए सफलतापूर्वक डिजाइन और निर्माण करके जहाज उपलब्ध करा रहा है। और जैसा कि आपने शुरू में ही कहा कि अगर मौसम की बात न हो तो जिक्र पूरा नहीं होगा, आप भी तो चलिए आज के आज सवेरे कार्यक्रम में मौसम का जिक्र कर लेते हैं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज मौसम साफ रहेगा। न्यूनतम तापमान सामान्य से 14 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया और अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। मुंबई में आसमान साफ रहेगा। न्यूनतम तापमान 18 और अधिकतम 34 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। और कोलकाता में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और मध्यम बारिश या गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। न्यूनतम तापमान 24 और अधिकतम 34 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। कितनी अचानक से बदला है ना मौसम,
आज से भी उठ
गई। नहीं, बेंगलुरु और हैदराबाद के मौसम के बारे में बताया हमने।
वेल नहीं, चेन्नई, बेंगलुरु एंड हैदराबाद, ऑल थ्री सिटीज आर गोइंग टू हैव मोर और लेस सिमिलर वेदर कंडीशंस। ऑल ऑफ देम वुड हैव अ पार्टिकुलर क्लाउडी स्काई थ्रूआउट द डे एंड टेम्परेचर इन चेन्नई वुड हॉवर बिटवीन 24 एंड 34, वाइल इन बेंगलुरु द टेम्परेचर वुड हॉवर बिटवीन 21 डिग्री सेल्सियस एंड 34 डिग्री सेल्सियस। When in Hyderabad as well, the temperatures hover between 22 and 36 degrees Celsius.
और अब हम बात कर लेते हैं आज के दिन की यानी कि 14 मार्च के इतिहास में आज की तारीख में कौन कौन सी घटनाएं घटी हैं और शायरा क्योंकि हम फिल्मों के हिंदी फिल्मों के खासतौर पर बहुत शौकीन है तो उसी के पीछे बात शुरुआत करते हैं 1931 में आज के दिन यानी 14 मार्च को भारतीय सिनेमा को उसकी आवाज मिली थी यानी कि पहली टॉकी रिलीज हुई थी आलमारा आज के दिन ये फिल्म रिलीज हुई थी और इसका पहला शो मुंबई के मैजिस्ट्रिक सिनेमा में दिखाया गया था
Absolutely, a very, very landmark event for Indians, I would say, because as you said, कि फिल्मों के बिना तो In 1903, the first national bird reservation was established in Sebastian Corridor. In 1914, a peace treaty was signed between Serbia and Turkey, and in 1923, U.S. President Warren G. Harding became the first president to pay taxes.
1987 में सिडनी में 10 सिडनी सैनिक क्रांति के बाद सरकार का तख्ता पलटा गया 1989 में दक्षिण अफ्रीकी नेशनल पार्टी द्वारा पीटर बोथा के स्थान पर एफडब्ल्यूडी क्लार्क को राष्ट्रपति बनाया गया और 1990 में श्रीमती अर्था पास्कल कारिल हैटी की पहली महिला राष्ट्रपति बनी 1999 में स्पेन का कार्लोस मोया विश्व का नंबर एक टेनिस खिलाड़ी बना और सन 2000 में मोहम्मद मुस्तफा नेरो सीरिया के नए प्रधानमंत्री बने तो ये तो बात है कुछ हिस्से की इतिहास की
Yes, and now we talk about some of the personalities who either have their birth or their anniversary today or their birthdays. Well, we are starting with a very important name in the field of science and today is the birth anniversary of one of the greatest and most influential scientists of all time, Albert Einstein. Best known for developing the theory of relativity, Einstein also made important contributions to quantum mechanics and was thus a central figure in the revolutionary reshaping of the scientific understanding of nature that modern physics accomplished in the first decades of the 20th century.
आपने इतने बड़े नाम के साथ आगाज किया है सायरा तो एक और बहुत बड़ा नाम हम अपने श्रोताओं को बता दें कि उनकी भी आज पुण्यतिथि है उनका नाम है कार्ल हेनरिक मार्क्स 5 मई 1818 में ट्रायल जर्मनी में उनका जन्म हुआ था और आज ही के दिन 14 मार्च 1883 में ब्रिटेन में उनका निधन हुआ था वो एक प्रसिद्ध जर्मन दार्शनिक अर्थशास्त्री और वैज्ञानिक समाजवाद के प्रणेता थे समाज अर्थशास्त्र और राजनीति के बारे में मार्क्स के सिद्धांतों की सामूहिक समझ को मार्क्सवाद के रूप में जाना जाता है जिसके अंतर्गत ये बताया गया था कि मानव समाज वर्ग संघर्ष के माध्यम से प्रगति करता है वर्ग संघर्ष का सिद्धांत कार्ल मार्क्स के वैज्ञानिक समाजवाद का निरूपण है यानी रीढ़ की हड्डी है
The next name is also a very important name in the field of music. Today is the birth anniversary of Ziya Mohiuddin Jagar, also known as the star Ziya Mohiuddin Jagar, and of course a classical musician par excellence, one of the 19th generation of the Jagar family group of musicians. He was largely responsible for the revival of the Rudra Veena as a solo concert instrument.
And हमारे श्रोता भी ये सुन ही रहे होंगे background में थोड़ा सा और सुनवा लेते हैं और शख्सियत की आज सुनने की है जिनका नाम लोग अक्सर कम जानते हैं लेकिन जैसे कि हमने कहा कि फिल्मों के हम शौकीन हैं तो हमारे वो सभी श्रोता जो फिल्मों की जानकारी रखते हैं उन्हें यकीनन उनका नाम पता होगा वो है विभूति मित्रा विभूति मित्रा जो एक हिंदी फिल्म निर्देशक और निर्माता थे उनका जन्म 1915 में कोलकाता में हुआ था और आज ही के दिन 1989 को मुंबई में उनका निधन हो गया था और हमारे श्रोताओं को अगर हम बताएं कि ऐसी कैसी फिल्मों का उन्होंने निर्माण किया जिनके गीत इतने लिखने तो जो श्रोता विभूति मित्रा का नाम नहीं जानते वो शायद कुछ तरह हैरान होंगे जैसे फिल्मों के नाम है उनके
फागुन महुआ और बसंत और इनका फागुन का बहुत ही खूबसूरत गाना हम लोग आज सुनाने वाले हैं
बिल्कुल
सके सके मेरा दिल ले गया पर तेरी तेरा दिल नहीं गया, मोती मोती अखियों में आंसू दे गया, हरे कौन पर तेरी तेरा दिल नहीं गया, मोती मोती अखियों में आंसू दे गया।
Another important name from the Marathi film industry, well today is Krishna Dada or Krishna Kond ki aur Dada Kond ki. Today is his death anniversary. He was a very very fine actor and also a film producer. One of the most renowned personalities in Marathi film industry, famous for his double entendre dialogues in movies.
और यहाँ तक कि हिंदी में भी जो उन्होंने फिल्में बनाई हैं, वो जो आपने कहा कि द्विअर्थी उनके के लिए जाने जाते हैं, उनका नाम मशहूर और उनका एक बहुत बड़ा वर्ग है जो उनका प्रेजेंस बन रहा है.
Absolutely, so we remember him today. Mm-hmm. And today we are also remembering Govind Vinayak Karandikar on his death anniversary. Better known as Vinda, he was a poet, writer, literary critic and translator of Marathi language. And he was born in Dhanavali village in the Devgarh Taluka, which is the present-day Sindhudurga of Maharashtra. His poetic works include Shwet Ganga or the River of Sweat, Mrigandha, Dhrupad, Jatak and Virupika. Two anthologies of his selected poems, Samhita and Adimaya, were also published. His poetic works for children include Rani Chabar, Sasna Chikan and Pari Gavari.
Ji, aaj janmadin hai ek bahut hi khoobsurat, bahut hi chulbuli, chanchal aur bahut hi manjeeli adakara ka, jinka naam hai Farida Jalal. 50 साल से भारतीय सिनेमा में वो सक्रिय हैं, फिल्मों में अपने अभिनय के माध्यम से 200 से भी ज्यादा फिल्मों में वो अभिनय करके अपनी अभिनय का अपनी कला का लोहा मनवा चुकी है. हिंदी के अलावा तेलुगु और तमिल फिल्मों में भी वो काम करती हैं. फरीदा जलाल का जन्म 14 मार्च 1949 को नई दिल्ली में हुआ था, यानी हमारी ये दिल्ली में. फरीदा ने अपने अभिनय करियर की शुरुआत 1967 में रिलीज फिल्म तकदीर से की थी. इसके बाद उन्होंने कई लीड और सहायक किरदार भी निभाए और कई टीवी शोज में भी उन्होंने अभिनय किया. इसके अलावा जो उनकी बहुत पहचाने हुई फिल्में हैं, जो बहुत हिट फिल्मों में पारस, हीना, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, ये तो है ही. इसके अलावा भी आपके पास है कुछ कहने के लिए आप सारे?
नहीं, मैं बस यही जल्दी से सुनाना चाहती हूँ आराधना फिल्म का वो खूबसूरत सा गाना जो उनसे फिल्माया गया.
बिल्कुल,
जो जो सवाल मैं तुमसे करूंगा उसका जवाब सोचकर देना. चल चल चल. अच्छा तो ये बताओ,
बागों में बाहर है?
मैंने पूछा बागों में बाहर है?
गजबों से निखार है
तो तुमको मुझसे क्या है?
बागों में बाहर है, गलियों से निखार है, तुमको मुझसे प्यार है, बागों में बहार है.
गाना भी अपने अपने खूबसूरत है और फरीदा जलाल का चेहरा नजरों में आ गया. तो आगे देखा जाए तो उनकी एक वो पहली फिल्म थी और राजेश खन्ना के साथ उनको लॉस किया गया, वो अलग बात है कि आने वाले वक्त में वो जितनी बहन के किरदार में ज्यादा पसंद की गई.
यस, बेबी इन द व्हेन शी वाज यंग एज द मोस्ट एंडियरिंग सिस्टर और फिर उसके बाद इन द लेटर इयर्स एज द मोस्ट एंडियरिंग आंट.
दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, हमने भी याद किया.
Absolutely.
और एक और बहुत बड़ा नाम सायरा, मैं चाहूंगी कि आप हमारी श्रोताओं के साथ उनका नाम साझा करें.
Yes, of course, it is the birthday of Aamir Khan and of course he is one of the three artists to rule the film industry today. आज की फिल्म इंडस्ट्री को यही कहा जाता है that it's incomplete without Aamir Khan. शाहरुख खान, anyway, we are remembering him today on his birthday and we all know that he comes from a family of जो लोग हमेशा फिल्मों से जुड़े रहे हैं, उनके अंकल हो चाहे उनके फादर हो,
हसन हुसैन के बेटे रहे और राजेश हुसैन तो उनके चाचा रहे ही हैं.
एब्सोल्युटली. And I think you have prepared a very beautiful medley.
हाँ, लेकिन उससे पहले मैं चाहूंगी कि छोटी सी बातें उनके बारे में यही बता दी जाए कि न सिर्फ वो एक अभिनेता हैं बल्कि निर्देशक हैं, स्क्रीन राइटर हैं, निर्माता हैं और यहाँ तक कि टीवी प्रस्तोता भी हैं और उनको कई अवार्ड मिल चुके हैं. और कयामत से कयामत तक से जो उन्होंने अपनी फिल्मों की शुरुआत की थी, जो उस वक्त की बहुत बड़ी हिट फिल्म थी, उसके बाद से आज तक उन्होंने बॉक्स ऑफिस पर अपना जलवा दिखा रखे हैं. और अब होना है हमको विदा अपने उन श्रोताओं से जो हमारा कार्यक्रम आज सवेरे सुन रहे हैं आकाशवाणी गोल्ड कॉलेश नंबर 1 MHz पर। नई मक्सर और सारा मुस्तकों का कार्यक्रम आज सवेरे यही खत्म करने की इजाजत दीजिए। नमस्कार।
कहते हैं बड़ा लोग।